ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानंद माधवम् श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी बैठ जाइए, पीछे दरी लगा गया है, बैठ जाइए। तो आज हम क्रमानुसार श्रीमद् भगवद गीता 13वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम है प्रकृति पुरुष तथा चेतना। श्लोक ब्लैकबोर्ड में लिखा गया है, पहले मैं उच्चारण करूंगा, उसके बाद सभी मेरे पीछे पीछे दोहराने के लिए प्रयास कीजिए। श्लोक संख्या 15। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभूतेवा निर्गुणं गुणभोक्तृच। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जिता अशक्तं सर्वभूतेवा निर्गुणं गुणभोक्तृच। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जिता असक्तं सर्वभूतेवा निर्गुणं गुणभोक्तृच। पढ़िए। श्लोक का शब्दानुवाद, सर्व समस्त इंद्रिया इंद्रियों का गुण गुणों का आभासम मूल स्रोत। सर्व समस्त इंद्रिया इंद्रियों से विवर्जितम विहीन असक्तम अनासक्त सर्वभूत प्रत्येक का पालन करता च भी एव निश्चय ही निर्गुणम गुण विहीन गुण भक्तृ गुणों का स्वामी च भी। श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद्भज चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। भावार्थ तात्पर्य। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती है, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती है, अतएव निर्गुण कहलाती है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती है। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती है जो कलमस रहित होती है। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वेत उपनिषद में 3.21 अपाणि पादो जवनो ग्रहिता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कलमसों से ग्रस्त नहीं होते, अतः उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं। वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं है, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं है। उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं। लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमसग्रस्त नहीं होती। भगवद गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमसग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कलमसग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को देख नहीं पाते। अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पश्चात दिस्तारिणे गुरवे गुरुचंद्राय राधिकादिदालय कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितं असक्तं सर्वभूतेव निर्गुणं गुणभोक्तृच परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। हरे कृष्णा। आज का ये संध्याकालीन भगवद्गीता सत्र में आए हुए सभी भक्तों को, सभी दर्शनार्थी को हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कन राधारास बिहारी जी मंदिर की तरफ से हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। आप सभी यहाँ पे कुछ सत्संग करने के लिए आए, भगवान को दर्शन करने के लिए आए, इसलिए हम आप सबका आभारी हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का महत्व, उनका पराकाष्ठा, उनका जो व्यक्तित्व के बारे में वर्णन किया गया है, कहा जाता है सृष्टि का प्रथम जीव ब्रह्मा, जब कुछ भी नहीं था इस संसार में, वही भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। बल्कि भगवान को स्तुति कर रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह, सभी का कारण भगवान है। यहां पे कहा गया है भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में है, परमात्मा रूप में है, लेकिन व्यक्ति चीज जान नहीं पाता। कहा जाता है ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान का, अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम गोविंद मादि पुरुषम तमंग भजामि। हर कण कण में भगवान विराजमान है। तो हम इसको कैसा रियलाइजेशन कर सकते हैं? देखिए, जैसा एक ग्लास दूध है, उसमें मक्खन भी है, उसमें दही भी है, उसमें छाछ भी है, उसमें सब कुछ, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसको करने के लिए कुछ प्रोसेस चाहिए। उसी प्रकार भगवान कृष्ण प्रभुपाद जी महाराज इस परपट में कहा बोल रहे हैं, जो शुद्ध हो जाता है भगवान को दर्शन कर सकता है। तो हमको पहले अपने को शुद्ध करना पड़ेगा। बाह्य शुद्ध के लिए हम साबुन लगाते हैं, कपड़ा में अच्छी तरह साफ करते हैं बॉडी को, लेकिन अंतर को शुद्ध करना है, उसके लिए कोई मेडिसिन संसार में नहीं है, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर नहीं दे सकता। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बिना महत्र जो पाद अभिषेकम, एक शुद्ध भक्त वैष्णव के मुखारविंद से जब भगवान कृष्ण का ब्रजवती हरि कथा श्रवण करेंगे, तब धीरे 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 हमारा कलमश चला जाएगा। कलमश अर्थ क्या है, किसको कलमश कहते हैं? एक दूसरे को ईर्ष्या करना, नाना प्रकार गलत चीज सोचना, भगवान को एक झूठा साबित करना, संसार को ही सत्य मानना, भगवान को अवॉइड कर लेना, मैं ही सब कुछ हूं ये सोचना, और बहुत सारे ऐसा धर्म प्रचार कर रहे हैं जो कि भगवान को भुला देने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, उनको स्वीकार करना, ऐसा बहुत सारा हमारा परिवेश चारों तरफ ही भगवान को भूलने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, जशास्त्र विद्धि में सूर्य वर्तते काम कारत न ससिद्धि वाप्नोति न सुखं न प्राम गति। जो भगवत गीता का बात नहीं मानता, श्रीमद भागवतम के बात को नहीं मानता, एवं अपने मन के हिसाब से काम करता है, मन में जो सोचा, मन चाहा चलो हम बाहर जाए, बाहर क्लब जाएंगे, चलो हम कुछ क्रिकेट खेलने जाएंगे, चलो हम पिकनिक मनाने जाएंगे, चलो हम शराब दुकान जाएंगे, मन जो बोलेगा वही करता है, तो क्या उसका क्या परिणाम होता है? न सुखं न पराम गति, वो न सुख प्राप्त कर सकता है, न जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। स्पष्ट रूप में भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं। इसलिए कहा गया है भगवान के बारे में जानने के लिए पहले अपने को भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए निष्कपट रूप में। जैसा अर्जुन का पहले अर्जुन खुद बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन जब भगवान कृष्ण को अपने गुरु रूप में स्वीकार किए एवं भगवान कृष्ण का जो गीता का जो प्रवचन ध्यान से श्रवण किए, तब धीरे धीरे उनके जो अपने मन में जो अहंभाव था कि मैं वो मोह में पड़ गए थे, वो सब चला गया। जो कि धनु बाण पकड़ने के लिए हाथ नहीं चल रहा था, हाथ से धनुष गिर गया, वही भगवान कृष्ण का कथा श्रवण करके भगवान के मुख से जब प्रवचन श्रवण किए तो धीरे धीरे उनके मन का कलमश चला गया। यहां पे कहा गया भगवान सभी अंग में सब कुछ कर सकते हैं। जैसा ब्रह्मा जी को भगवान सृष्टि किए, कैसा सृष्टि किए, अपने नाभि से सृष्टि किए, उनके लिए दूसरे किसी का सहायता जरूरत नहीं है। ये प्रकृति को सृष्टि किए को कैसा किए, भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं मया दक्षेण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नाने व कौंतेय जगत विपरिवर्तते। मेरे निर्देश में ही प्रकृति काम कर रहा है। इसका जो मेन दुर्गा देवी को इसका सुपरिटेंडेंट कहा गया है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। सृष्टि स्थिति प्रलय किसके अनुगत्य में होता है, भगवान बोल रहे हैं। ब्रह्मा संहिता में ब्रह्मा जी भगवान का स्तुति कर रहे हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। दुर्गा देवी इसका सुपरिटेंडेंट है। इच्छान रूपम जैसा चेष्ट तैसा, भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। वही गोविंद को मैं प्रणाम कर रहा हूं बोल के ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। लेकिन भगवान सब कुछ सृष्टि करते भी किसी से लिप्त नहीं होते। जैसा कमल कीचड़ से उत्पन्न होता है लेकिन कीचड़ उसको स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार भगवान का तीन मुख्य शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति, एक अंतरंगा शक्ति, एक तटस्था शक्ति, जिसको इंग्रेजी में बोलते हैं एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी। तो ये भौतिक जो सृष्टि में जो कुछ हम देख रहे हैं ये बहिरंगा शक्ति है, भगवान का बहिरंगा शक्ति। एवं जो आत्मा प्रत्येक शरीर के हृदय में जो जीवात्मा है और भगवान का अंतरंगा शक्ति का अंश है, ये तटस्था शक्ति का अंश है। एवं अंतरंगा शक्ति जो है भगवान के धाम पे काम कार्य करती है, गोलोक धाम पे। तो यहां पे बहिरंगा शक्ति काम करती है। तो ये जो देख रहे हैं ये एक्सटर्नल एनर्जी है, इसमें हम सब कुछ समझ लेते हैं। इसलिए भगवान गीता में इसलिए बता रहे हैं अर्जुन का जैसा मोह हो गया था, हमारा पूरे संसार में सभी का ऐसा ही मोह है, बहुत कम लोग हैं। भगवान गीता में बता रहे हैं कथा किसको कहते हैं, कल्याण कल्याण करत जस कथा, अर्थात जो व्यक्ति को कल्याण प्रदान करता है, आत्मज्ञान देता है, भगवान कृष्ण के बारे में समझा सकता है, भगवान कृष्ण के बारे में हम स्वीकार कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वही प्रकृत कथा है। हम कथा सुनेंगे मतलब भगवान को लेके जाएंगे। शरीर में प्रत्येक जीव शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है, वो किसका अंश है, परमात्मा का अंश है। जैसा आग जल रहा है उसमें से बहुत सारे चिंगारी निकलता है, लेकिन वो चिंगारी कभी भी आग के साथ समान नहीं है। वो चिंगारी का गुण है, थोड़ा सा जलता है फिर बुझ जाता है। जैसा समुद्र से पानी लाएंगे एक चम्मच, उसमें जो गुण है पानी समुद्र में वही गुण है, वो नमक है, लेकिन वो सूक्ष्म है, अणु है, लेकिन समुद्र का पानी बहुत है। गुण में समान है लेकिन परिमाण में समान नहीं है। उसी प्रकार हम आत्मा परमात्मा का अंश है लेकिन परमात्मा के समान नहीं है, उनका क्षुद्र अंश है हम। लेकिन हम टेम्पररी शरीर को हम परमानेंट समझ लेते हैं, ये सबसे बड़ा दुख की बात है। जैसा भागवतम में कथा आती है। एक सिंधु देश का राजा थे, राजा रहुगण। वो भागवत कथा श्रवण करने के लिए जा रहे थे गंगा सागर। जाते जाते अचानक, पहले तो इतना वाहन नहीं था, इतना गाड़ी नहीं था, पहले पालिंकी में जाते थे। तो जा रहे थे चारों आदमी कंधे में उनको लेके, सवारी को लेके जा रहे थे। तो अचानक उसमें से एक व्यक्ति का तबीयत खराब हो गया। तो एक अच्छा एक हट्टा कट्टा व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो कि पालिंग को ले सकता है। तो तुरंत ढूंढते तो मिला ही नहीं। अचानक एक पागल जैसा एक व्यक्ति वहां पे घूम रहा था, उसको पकड़ लिया। लेकिन वो परम ज्ञानी थे, वो सभी ज्ञान गीता भागवत का उनके पास ज्ञान था, लेकिन बाहर से वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। कोई व्यक्ति ज्ञानी है कि अज्ञानी है, बाहर से दिखाई नहीं पड़ता। जब तक वो मुख से बोलेगा ही नहीं, तब से पता ही नहीं चलेगा, है कि नहीं। तब उनको लेके आ गए खंदे, उनको पालिंकी में ढोने के लिए बोले, पालिंकी ढोने लगे। लेकिन आगे चीटी का धार जा रहा है, छोटे छोटे जीव है, उसको मारने के लिए नहीं चाहते थे। पैर के नीचे अगर आ जाता था तो पैर को साइड कर देते थे। तो पालिंकी क्या करता था, हिलना चालू करता था। तो राजा गुस्सा हो गए, कौन है सब पालिंकी को कौन ढो रहा है। तो दूसरे जो तीनों आदमी थे वो बोल रहे, महाराज एक आदमी का तबीयत खराब हो गया, इसलिए दूसरे व्यक्ति को हम लगाए हैं। तो उसको मालूम नहीं क्या राजा का दंड क्या होता है, अगर राजा अगर क्रोधित हो जाए तो उनको मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। लेकिन उनका चिंतन ही नहीं है, वो भगवान कृष्ण के चिंतन में लगे हैं। तो फिर आगे चल रहे हैं, फिर ऐसा कोई चींटी आता था, कोई जीव आता था, फिर अपने पैर को ऊपर उठा देते थे। ऐसा पालिंगी क्या करता था, ढोलने लगता था। तो बाद में राजा गुस्सा हो गए, क्रोधित होके बोले नीचे रखो पालिंगी को। तो नीचे जब रखे तो तीनों को बोले, क्यों तुम ऐसा कर रहे हो। लेकिन महाराज हम नहीं है, ये जो नया व्यक्ति लगा है ये ऐसा कर रहा है। तो उनको डांटने लगे कि तुम्हें एक सिंधु देश का राजा हूं, मैं गंगा सागर जा रहा हूं भागवत कथा श्रवण करने के लिए, लेकिन राजा को तुम इतना बड़ा अपमान कर रहे हो, धोने तुमको आता ही नहीं। तो जब बार बार डांटने लगे तो उस समय जो जड़भरत, उनका नाम था जड़भरत, वो बहुत बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रहुगण तत्पसान जाति न चिज्या निर्वापनात गृहात्बा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्र जो पाद अभिषेकम। ये जो आत्मज्ञान, ये जो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ये कब हमारे जान सकते हैं। जैसा बच्चा जब तक स्कूल नहीं जाता, पिता माता का गाइड में नहीं रहता, तब तक वो कभी भी उसका चरित्र का उन्नति नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं पढ़ाई कर सकता। उसी प्रकार जब तक बिना महत्व शुद्ध भक्तों का जब अनुगत्य नहीं मिलेगा, कृपा नहीं मिला, तब तक हमारा ज्ञान उदय नहीं हो सकता। हो सकता कोई व्यक्ति धूप में, कड़ी धूप में तपस्या क्यों ना करे, ठंडी में क्यों ना तपस्या करे, किंतु साधु का कृपा चाहिए। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का कृपा से अर्जुन भगवान कृष्ण को समझ पाए। जैसा सूर्य का किरण से हम सूर्य को दर्शन कर सकते हैं, है कि नहीं। सूर्य का किरण से हम सूर्य को दर्शन कर सकते हैं, अपने ये चक्षु से, चर्म चक्षु से हम सूर्य को दर्शन नहीं कर सकते। अभी चाहेंगे तो भी हम नहीं दर्शन कर सकते। इसीलिए कृपा चाहिए। कृपा कब आता है, जब बार बार श्रवण कीर्तन करते हैं। जैसा परीक्षित महाराज, 7 दिन उनका मृत्यु था, 7 दिन, लेकिन 7 दिन केवल भगवान कथा श्रवण किए एवं अपने को शुद्ध हो गए। यहाँ पे प्रभुपाद जी महाराज बरभट में बोल रहे हैं कि व्यक्ति को चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना रूप का दर्पण को अगर मार्जन करेंगे, साफ करेंगे हमारा कॉन्शियसनेस को, तब हम शुद्ध चीज को जान सकते हैं। क्योंकि हम मेंटल स्पेकुलेशन करके भगवान को समझ नहीं सकते क्योंकि ये संसार के परे है वो, ये हमारे इंद्रिय तो इस संसार में ही फंसा हुआ है, हम असली चीज को कैसे जान सकते हैं। इसके लिए हमको इंद्रिय को शुद्ध करना पड़ता है। जैसा कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, एमबीए कर रहा है, एमटेक कर रहा है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसको हासिल करना पड़ता है। लेकिन सभी भगवान कृष्ण के भक्ति भक्त कर हो बन सकते हैं, भगवान कह रहे हैं गीता में, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत जगत है। अर्जुन, इस संसार में तुम जो कुछ देख रहे हो सो मेरे से सृष्टि हुआ है, एवं जो मेरे को थोड़ा सा ही भक्ति करता है, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, मैं उसको भयंकर स्थिति से रक्षा करता हूं। इसलिए भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय का द्वितीय श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं अनार्ज्य बोल के। अनार्ज्य मतलब क्या है? अर्जुन को डांट रहे भगवान है, अर्जुन तुम्हारे जो अभी जो मन में आ रहा है कि इनको मार के मैं पाप का भागीदार बनूंगा, ये मेरा पितामह है, मेरा गुरु है, ये अनार्ज्य का काम है। जो आर्ज्य है वो कभी ऐसा नहीं सोचता, क्योंकि संसार में जो भी मृत्युवरण करता है उसको दोबारा जन्म मिलना सुनिश्चित है। इसका प्रमाण क्या है? जैसा एक पिताजी का चार बेटे होते हैं, चार बेटे का देखो एक पेपर में साइन कीजिए, सबका अलग अलग साइन होगा, सबका कॉन्शियसनेस अलग है, सबका बोलने का उनका व्यवहार सब अलग है। मतलब प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक देश में सभी अपना अपने कर्म के अनुसार शरीर मिलता है। भगवान कृष्ण कह रहे गीता में यंग यंग भाव स्मरणंग भावंग तजन तंते कलेवरम। तो इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान, हे अर्जुन इसमें तुम चिंता करने का जरूरत नहीं है। जैसा व्यक्ति अपने पुरातन पोशाक छोड़ के नया पोशाक पहनता है उसमें कष्ट क्या है? कोई व्यक्ति अपने फटा हुआ पोशाक फेंक के नया पोशाक पहनेगा उसमें कोई कष्ट है क्या? आनंद आएगा। उसी प्रकार सबका मृत्यु सुनिश्चित, अगर तुम नहीं भी मारोगे मैं सबको मार दूंगा। निमित्त मात्र भवे सभ्य साजी, तुम निमित्त मात्र हो, तुमको माध्यम करके मैं करना चाहता हूं क्योंकि तुम मेरा भक्त हो, इससे तुम्हारा सम्मान होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, एवं तुम अगर ये आर्ज्य तुम्हारा, तुम आर्ज्य कुल में जन्म हुए हो लेकिन तुम्हारा जो चेतना है अनार्ज्य जैसा है, इसलिए तुमको अच्छे से श्रवण करना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए वास्तव में जीवन क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, व्यक्ति सब कुछ, हम क्या है, एक अल्टीमेट बेनिफिट है, एक इमीडिएट बेनिफिट है। हमको क्या है, इमीडिएट बेनिफिट चाहिए, अल्टीमेट बेनिफिट नहीं चाहिए इस संसार में। अभी ये हम सोचते हैं, अभी हमको चाहिए हजारे रुपया फेंको लाखों रुपया कमाओ, अभी चाहिए। कि थोड़ा सा लेट हो गया तो बोले ये गलत, कहते हैं फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। जिसके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है अगर हिम्मत नहीं आ रहा तो वही एक दिन उसका सक्सेस का पिलर हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। उत्साह निश्चय धैर्य भक्ति ऐसा चीज है, मिल जरूर भगवान कृष्ण मिलेंगे, जरूर भगवान को दर्शन कर सकते हैं, भगवान का प्रेम लाभ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय का व्यवधान है, समय लग सकता है लेकिन जो मेहनत का फल है क्या है, मीठा लगता है। ज्यादा मेहनत, भगवान कृष्ण कह रहे सुसुकम कर्तृम अव्ययम, आनंद है जैसा गन्ना, गन्ना नीचे से या ऊपर से जिधर से भी खाएंगे हमको मीठा लगेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार भक्ति कोई शुरुआत भी कर रहा है फिर भी आनंद आ जाएगा उसको, अगर उसको बोले दो माला भी जप चालू किए करे, प्रत्येक दिन सिर्फ दो माला जप करे, वो खुद रिलाइजेशन कर सकता कि नाम में क्या शक्ति है। अगर नाम में उसको टेस्ट मिल गया तो समझो भगवान मिल गए, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो यहां पे भगवान कृष्ण अपने चक्षु से भोजन कर सकते हैं कहा गया है, कर्ण से देख सकते हैं, जिह्वा से अग्रहण कर सकते हैं, सब सभी इंद्रिय सभी काम कर सकता है, लेकिन हमारे सभी इंद्रिय सभी काम नहीं कर सकता। हम हमारे ऐसा है, देखिए संसार में व्यक्ति का आंख होते हुए भी दिखाई पड़ता है कि आंख है, लेकिन वो दिखाई दिख नहीं पाता। कान होते भी सुन नहीं पाता, ऐसा ही व्यक्ति रहते हैं, है कि नहीं। इंद्रिय होते भी इंद्रिय, जब तक भगवान अंदर से परमात्मा का प्रेरणा नहीं आएगा, आत्मा जीवनी शक्ति काम नहीं करेगा, तब तक हमारा इंद्रिय होते हुए भी इंद्रिय काम नहीं कर सकता। करना है, आंख है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी देखिए व्यक्ति अपने अगर मंदागर बुद्धि है, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, तो इंद्रिय भी बराबर काम नहीं करता। इसलिए सभी का स्रोत क्या है? जीवन शक्ति, भगवान कृष्ण का अंश जो जीवात्मा है, बोल के प्रत्येक अंग प्रत्यंग ठीक से काम कर रहा है। जब से शरीर से आत्मा जीवात्मा चला जाए, तुरंत शरीर डेड बॉडी हो जाएगा। वो इंजीनियर हो सके, डॉक्टर हो सके, मिनिस्टर हो सके, कोई भी हो सके, इसको ये रहस्य का ज्ञान देने के लिए भगवान कृष्ण आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र मैदान पे अर्जुन के माध्यम से भगवान शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं, एक शास्त्र दबकी पूत गीतं, एक पुत्र दबकी पुत्र एव, एक मंत्र तस्य नामानि जानि, कर्मात्मनस्य देवस्य सेवा। देवई का पुत्र कौन है? भगवान कृष्ण। उनके मुख से जो निकला एकमात्र शास्त्र है भगवद गीता। एक पुत्र देवकी पुत्र एव, एक मंत्र जो हरे कृष्ण हम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एकमात्र प्रेस्क्राइब धर्म है, कलयुग में प्रेस्क्राइब मंत्र है। कर्मात्मनस्य देवस्य सेवा, उनका सेवा करना, भगवान कथा श्रवण करना भी एक सेवा है। भगवान को प्रणाम करना, भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये सब सेवा में आता है। वो सरल है, कहा जाता है इसमें कोई आंख बंद करके भी चलता है फिर भी एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है। भक्ति ऐसा चीज है, लॉस का चांस नहीं है। अगर कोई अगर 5% भी भक्ति किया है एवं शरीर छूट गया, नेक्स्ट जन्म उसका 6% से चालू होता है, लस नहीं होता। भगवान कह रहे हैं गीता में, सुचिनाम श्रीमताम गेह जो गभ्रस्त अभी जायते। कोई व्यक्ति अगर भक्ति करके आधा से अगर उसका आधा करके पूरा उसका पूरा नहीं कर पाया, अगला जन्म में एक बहुत बड़ा धनाढ्य परिवार में जन्म होता है, बहुत धनी परिवार में, जिस परिवार में की धन रहते हुए भी वो लोग भगवान की भक्ति करते हैं। नहीं तो एक भक्त के परिवार में जन्म होगा, जैसा हमारा प्रभुपाद जी महाराज बचपन से एक भगवान की भक्ति करते थे, पढ़ाई भी करते थे स्कॉटेज कॉलेज में, जो कि ब्रिटिश लोगों का कॉलेज था, वो क्रिश्चियन कॉलेज है कलकत्ता में, तो वहां पे प्रभुपाद जी पढ़ाई किए, पिता माता भी भक्त थे, लेकिन ऐसा परिवार में जन्म होता है। इसलिए भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। इसलिए हमको जब समय हो, हफ्ता में हो, 10 दिन में हो, 15 दिन में, कम से कम यहाँ पे आके सत्संग करना चाहिए, हर दिन एक एक श्लोक भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। हम कुछ श्रवण करेंगे, कुछ अध्ययन करेंगे, तब हम जान सकते हैं। देखिए रुक्मिणी बचपन में उनके पिताजी साधु संत को घर में बुलाते थे, भगवान कृष्ण का गुणगान करते थे, और बोलो वो साधु संत रुक्मिणी का पिताजी माता के पास भगवान का गुणगान करते थे द्वारिकाधीश के बारे में। उनका श्रवण करते करते उनके प्रति इतना आकृष्ट हो गए कि उनके साथ ही वो विवाह करने के लिए स्थिर हो गए। इसलिए उनको शिशुपाल के साथ वाणी ग्रहण करने के लिए उनका स्थिरीकृत हो गया था, लेकिन रुक्मिणी जी का मन किसके प्रति था? भगवान के प्रति। उनका कथा श्रवण करके, 5 प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध है, पिता पुत्र संबंध, जैसा यशोदा माता भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखते थे, अर्जुन भगवान को सखा के रूप में, हनुमान जी भगवान को अपने प्रभु के रूप में, गोपियों लोग जो ब्रजवासी भगवान को अपने प्रेमिका के रूप में, ऐसा 5 प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध है। कोई भी एक संपर्क रख के हम भगवान के साथ अपने संबंध जोड़ सकते हैं। तब केवल श्रवण कीर्तन करके, भगवान को प्रणाम करके, भगवान को अर्पित भोजन करके हम भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा सकते हैं। इसलिए जब समय होगा यहाँ पे आइए, सत्संग कीजिए, भगवान कथा श्रवण कीजिए, भगवान के कीर्तन में अंशग्रहण कीजिए, तो जरूर भगवान प्रति हमारा प्रेम श्रद्धा बढ़ेगा। जितना बढ़ेगा उतना संसार का जो कष्ट है और तनाव हमारे धीरे धीरे चला जाएगा एवं शुद्ध पवित्र हो जाएंगे एवं इसी जन्म में हम भगवान को दर्शन कर भगवान के धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक बार मेरे साथ भगवान का नाम उच्चारण कीजिए। सभी बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, भगवत बाण श्रीमद भगवत गीता की, राजराजेश्वर भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निदाय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।
श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादां सगन ललिता श्री विशाखान्वितां हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण